दोस्तों, पवित्र हज के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम भी पसंद आएगा।
दोस्तों, पवित्र हज के संस्कारों को आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हज के तौर पर जाना जाता है। ये केवल एक इबादत नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच एकता और एकजुटता के लिए किए जाने वाले प्रयासों का अभ्यास है। सूरह तूर की शुरुआती आयतों में आया है कि गवाह है तूर पर्वत और लिखी हुई किताब, फैले हुए झिल्ली के पन्ने में और बसा हुआ घर और ऊंची छत और उफनता समुद्र के तेरे रब की यातना अवश्य घटित होकर रहेगी कि जिसे टालने वाला कोई नहीं। जिस दिन आकाश बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ चलते फिरते होंगे तो तबाही है उस दिन झूठलाने वालों के लिए जो बात मानने में लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। जिस दिन वे धक्के देकर जहन्नम की ओर ढकेले जाएंगे और कहा जाएगा, यही है वो आग जिसे तुम झूठलाते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से रवायत है कि मुराद वही घर है कि जिसकी पवित्र कुरान में कसम खाई गई है। ये उस समय शुरू हुआ जब फरिश्तों ने पृथ्वी पर मानो खिलाफत पर आपत्ति जताई और ख़ुद को मनुष्यों की तुलना में पृथ्वी पर खिलाफत के योग माना, क्योंकि वे हमेशा अपने ईश्वर के आज्ञाकारी होते हैं। उस समय अल्लाह ने उनका उनकी अज्ञानता की ओर ध्यान केंद्रित कराया और कहा कि मैं वो जानता हूँ कि जो तुम नहीं जानते हो।
अल्लाह द्वारा कही गई बात के बाद फरिश्तों को ये एहसास हुआ कि उनका मालिक उनकी बातों की वजह से उनसे नाराज़ हो गया है, इसीलिए उन्होंने अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसके प्रकोप से बचने की प्रार्थना की। इस बीच दयालु अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की और आसमान के नीचे एक घर बनाया ताकि वे वहाँ जाकर उसकी परिक्रमा अर्थात तवाफ़ करें। उस समय अल्लाह ने फरिश्तों को यह आदेश दिया कि वो ज़मीन पर एक घर बनाए, जिसका उल्लेख सूरह तूर में बैत मामूर के नाम से किया गया है, ताकि जो भी इंसान ज़मीन पर पैदा हो वो उस घर का तवाफ़ करे जैसे कि फरिश्तों ने किया है, ताकि अल्लाह की रहमत उन तक पहुँचे और उसके प्रकोप से सुरक्षित रहें। यही कारण है कि पवित्र काबा हमेशा से एक ऐसा स्थान रहा है कि जहां इंसान अल्लाह से अपने दिल की बात करता है, उससे मदद मांगता है। लेकिन ये ईश्वरीय परंपरा इतिहास के अलग अलग दौर में भटकती रही। यही कारण है कि अल्लाह ने उन भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए हर दौर में अपना एक दूत भेजा, ताकि लोगों को सही रास्ते की ओर ला सकें। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सभी ईश्वरीय दूत मानवता को अंधविश्वास और भ्रम से बचाने की कोशिश करते रहे, ताकि इंसान शैतानी पंजों से दूर रहे और ईश्वर की रहमतों से नज़दीक हो जाए।
दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबे समय तक इंसानों को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनके समय के अधिकांश लोग गुमराह और भटके हुए थे। उस ज़माने में एक भीषण और विशाल तूफान ने पूरी ज़मीन को अपनी चपेट में ले लिया था। गुमराह और भटके हुए लोगों को उनके कर्मों की उसने सज़ा दी। तूफान के समाप्त होने के बाद ज़मीन पर एक बार फिर से जीवन ने शुरुआत की। मोमिन और अच्छी पीढ़ी के लोग पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, लेकिन इस बीच शैतान ने अपना काम जारी रखा और धीरे धीरे फिर से लोगों को बहकाने में कामयाब होने लगा। देखते ही देखते शैतान ने एक बार फिर से धरती पर अंधविश्वास और अंधकार फैला दिया। उस ज़माने में कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर पैगंबर बनाया गया, तब उस समय एक बार फिर इंसानों में अनेकेश्वरवाद की ओर रुझान बढ़ चुका था। लोग अल्लाह को छोड़कर छोटे छोटे खुदाओं और मूर्तियों की उपासना करने लगे थे। ऐसे ईश्वर की उपासना जिन्हें वे अपने हाथों से पत्थर और लकड़ियों के जरिए बनाते थे। हज़रत इब्राहिम ने पत्थर के झूठे खुदाओं की मूर्तियों को तोड़ा और फिर से अल्लाह के घर पवित्र काबे का निर्माण किया, ताकि एक ऐसा स्थान हो कि जहां इंसान अल्लाह की इबादत कर सके। हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल पहले ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने एहराम पहना था और हज के संस्कारों को अंजाम दिया था कि जिसका अल्लाह ने आदेश दिया था।
इस्लाम से पहले ईश्वरीय किताबों के मानने वाले, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले शामिल हैं, काबे को हमेशा एक पवित्र स्थल के रूप में ही मानते थे। यहाँ तक कि उस समय की ईरानी जनता भी पवित्र काबे की ज़ियारत करने जाया करती थी और इस पवित्र स्थान पर महंगे महंगे और मूल्यवान तोहफे चढ़ाया करते थे। इस्लाम के आगमन से कई शताब्दियों पहले मक्का के बुज़ुर्गों ने काबे के चारों ओर मूर्तियां रखीं, जो धीरे धीरे हज की रस्मों का हिस्सा बन गई थी। इसके अलावा कई वर्षों के दौरान कई अन्य गैर इस्लामी रस्मों ने भी इस पवित्र स्थल पर अपना रास्ता बना लिया था। और जब ईश्वर के अंतिम दूत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की ज़मीन पर पैगंबर के रूप में भेजे गए, तब ये पूरी ज़मीन अज्ञानता, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। लेकिन मक्का की विजय के बाद पैगंबर इस्लाम अपने साथियों की मदद से और विशेष रूप से अपने प्रिय चचेरे भाई, उनके उत्तराधिकारी हज़रत अली की मदद से पवित्र काबे को मूर्तियों और बुतों से पूरी तरह से पाक कर दिया। उन्होंने लोगों के विचारों से अंधविश्वास को दूर किया और मुसलमानों को उसी प्रामाणिक हज़रत इब्राहिम के तरीके से हज की रस्में सिखाईं। तब से हर साल इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने ज़िलहिज्जा के पहले दशक में दुनिया भर के मुसलमान अंतिम पैगंबर की तरह पवित्र हज के संस्कारों को अंजाम देने के लिए पवित्र शहर मक्का की यात्रा करते हैं।
दोस्तों, अल्लाह पवित्र कुरान के सूरह हज में हज का परिचय कराने के बाद हज के संस्कारों को अपनी निशानियां बताता है और इनको अंजाम देने वालों को अपना ख़ास बंदा करार देता है। जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा कि हज केवल एक इबादत नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच एकता और एकजुटता के लिए किए जाने वाले प्रयासों का अभ्यास है। हज जहां अल्लाह के सामने विनम्रता और उसकी बंदगी का इजहार है, वहीं मुसलमानों की एकता और भाईचारे की निशानी भी है। इस महाधार्मिक सम्मेलन में अमीर गरीब, श्वेत अश्वेत सब एक साथ हैं। किसी भी कबीले, नस्ल और राष्ट्रीयता के मुसलमान एक उद्देश्य और एक समान लक्ष्य के साथ सभी एक ही काम अंजाम देते हैं, और वो है अल्लाह की इबादत और उसके द्वारा बताए गए हज के संस्कार अंजाम देना। हज इंसानी ज़िंदगी का स्तंभ और ऐसे अहम संदेश व पाठ पर आधारित है कि जिसमें इंसानी ज़िंदगी के व्यक्तिगत व सामाजिक आयाम शामिल हैं। हज इस्लामी जगत के बीच एकता के प्रतीक होने के साथ साथ मुसलमानों के बीच एकता को नुकसान पहुँचाने वाले हर कारण को रोकने और मतभेद पैदा करने, विशेषकर शिया सुन्नी के बीच फूट डालने वालों के मुंह पर तमाचा है।
پیغمبر اسلام نے اپنے جیون کے انتم حج میں مسلمانوں کو بھائی چارے اور ایکتا کا آہوان کیا تتھا ایک دوسرے کے ادھیکاروں کا ہنن کرنے سے منع کیا اور کہا، ہے لوگو، میری بات سنو، شاید اس کے بعد میں تم سے اس استھان پر بھینٹ نہ کروں۔ ہے لوگو، تمہارا جیون اور دھن ایک دوسرے کے لیے آج کے دن اور اس مہینے کی بھانتی اس سمے تک سمانی ہے جب تم ایشور سے بھینٹ کرو گے، اور ان پر ہر پرکار کا اتکرمن حرام ہے۔ اب مسلمانوں کے وبھن گٹ و دل اسلامی جگت کے پرتندتو کے روپ میں سعودی عرب کے پوتر نگر مکہ اور مدینہ گئے ہیں تاکہ اسلامی اتہاس کی نرنائک ایوم مہتوپورن گھٹناؤں کی یاد تازہ کریں، پیغمبر اسلام کی انوشنساؤں کو یاد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے و سمرستا کے ساتھ اپاسنا کی گھاٹی میں قدم رکھے۔
وشیش کر اس ورش کی جب اسلامی جاگرکتا و چیتنا تتھا مسلمانوں کی پہچان کی رکشا بہت مہتوپورن وشے ہو گئی ہے، اس بات میں کوئی سندے نہیں ہے کہ اسلامی جاگرکتا حج کے موسم میں مسلمانوں کے ایک استھان پر ایکترت ہونے کا ایک پرتیفل ہے۔ اس آدھار پر اسلامی جاگرکتا کو مضبوط کرنے کے لیے حج کا موسم ایک مولیوان اوسر ہے جو وبھن دھرموں و سمپردایوں کے لوگوں کے مد ایکتا و ویچارک سمرستا سے ویوہارک ہوگا۔ اسلام ایک پریپورن دھرم کے روپ میں منش کی سمست آوشکتاؤں پر دھیان دیتا ہے، اور وہ منش کی سمست پراکرتک آوشکتاؤں کی پورتی کرنے والا ہے۔ اسلام نے منش کے استتو کی پورن پہچان کے کارن مہان ایشور منش اور منشیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ سمبندھ کے بارے میں وشیش ویوہار و قانون نردھارت کرتا ہے۔ حج اور اس کے سنسکار اسی کارکرم میں سے ہیں جو منش کی پرگتی و وکاس میں پربھاوی ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، ہر پرکار کے ویکتیگت جاتیے اور ورگیے بھید بھاؤ سے مکتی حج کا سپرینام ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کارکرم کا سمے یہیں سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیں۔